नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। चार्ली मैकेसी की द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स एक चित्रित आधुनिक दृष्टांत है जो पारंपरिक कथानक से अधिक छोटे संवादों, हस्तलिखित वाक्यों और भावपूर्ण रेखा चित्रों पर आधारित है।
पहली बार 2019 में प्रकाशित यह पुस्तक एक अकेले लड़के और उसके तीन असमान साथी, केक पसंद करने वाले मोल, जीवन से आहत और सतर्क फॉक्स तथा शांत और विवेकपूर्ण हॉर्स के बीच बनते संबंध को प्रस्तुत करती है। वे कठिन भूभाग से गुजरते हैं, पर पुस्तक का वास्तविक विषय बाहरी यात्रा नहीं बल्कि डर, अपनापन, सहायता मांगने, आत्मसम्मान और प्रेम के बारे में उनकी बातचीत है। मैकेसी का उद्देश्य जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देना नहीं है। वे संक्षिप्त, याद रहने योग्य विचारों के माध्यम से पाठक को अपनी भावनाओं और रिश्तों पर रुककर विचार करने का अवसर देते हैं। रंगीन और श्वेत श्याम चित्र शब्दों के अर्थ को विस्तार देते हैं, इसलिए यह पुस्तक पढ़ने के साथ देखने और महसूस करने का अनुभव भी बनती है। इसकी सरलता बच्चों के लिए सुलभ है, जबकि असुरक्षा और आत्मस्वीकृति के विषय वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक रहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, चार मित्रों के माध्यम से मानवीय स्वभाव के अलग अलग पक्ष। पुस्तक की रचना चार पात्रों के अंतर के कारण प्रभावी बनती है। लड़का जिज्ञासु है और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछता है जिन्हें लोग भीतर ही भीतर लेकर चलते हैं। मोल भोजन, विशेषकर केक के प्रति अपने लगाव और सहज आशावाद के कारण हल्कापन लाता है। वह गंभीर बात को भी मानवीय और सरल ढंग से कह सकता है। फॉक्स कम बोलता है क्योंकि उसे जीवन ने चोट पहुंचाई है। उसका सतर्क रहना इस बात का संकेत है कि भरोसा हर व्यक्ति के लिए समान रूप से आसान नहीं होता। और सबसे स्थिर उपस्थिति है जो बिना उपदेशात्मक हुए सहारा और दृष्टि देता है। इन पात्रों को कठोर मनोवैज्ञानिक श्रेणियों की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। वे किसी एक व्यक्ति के भीतर मौजूद जिज्ञासा, भूख, भय, मौन और करुणा जैसे भावों के रूपक हैं। खास बात यह है कि समूह फॉक्स को बदलने के लिए मजबूर नहीं करता। उसका कम बोलना भी स्वीकार किया जाता है। इसी तरह हॉर्स की शक्ति के पीछे भी अपनी असुरक्षाएं हैं। पुस्तक बताती है कि मित्रता समान स्वभाव वाले लोगों का मिलन भर नहीं है, वह अलग अनुभवों और सीमाओं के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया है। पात्रों की सादगी पाठक को अपने रिश्तों में यह देखने देती है कि किसे सलाह नहीं बल्कि धैर्यपूर्ण साथ चाहिए। दूसरा, कमजोरी स्वीकारना और सहायता मांगना साहस का रूप। मैकेसी की केंद्रीय बातों में एक यह है कि सहायता मांगना कमजोरी का प्रमाण नहीं, साहस का कार्य हो सकता है। यह विचार विशेष रूप से उस सामाजिक आदत के विरुद्ध जाता है जिसमें आत्मनिर्भरता को हर परिस्थिति में अकेले सब संभाल लेने से जोड़ा जाता है। पुस्तक के संवाद दिखाते हैं कि भय, उदासी या अनिश्चितता को छिपाने से व्यक्ति मजबूत नहीं बनता। भरोसेमंद संबंधों में अपनी जरूरत व्यक्त करना जुड़ाव की शुरुआत हो सकता है। फॉक्स का चरित्र इस विषय को दृश्य रूप देता है। वह आरंभ में चोट खाया हुआ और बचाव की मुद्रा में है, इसलिए उसके साथ संवेदनशीलता आवश्यक है। मोल द्वारा उसे मुक्त करना केवल दया का प्रसंग नहीं है, यह बताता है कि किसी की कठोर प्रतिक्रिया के पीछे पीड़ा हो सकती है। बाद में समूह के बीच फॉक्स की उपस्थिति ही मूल्यवान मानी जाती है, चाहे वह बहुत कुछ न कहे। हॉर्स के संवाद भी मदद पाने को मानवीय आवश्यकता की तरह रखते हैं, न कि असफलता की तरह। पुस्तक कोई उपचार पद्धति या मानसिक स्वास्थ्य का विस्तृत मार्गदर्शक नहीं देती, फिर भी इसका व्यावहारिक संकेत स्पष्ट है। कठिन समय में व्यक्ति अपनी स्थिति को नाम दे, भरोसेमंद लोगों तक पहुंचे और दूसरों की चुप्पी को तुरंत उदासीनता न माने। संक्षिप्त रूप में यह भावनात्मक ईमानदारी को संबंधों की मजबूती से जोड़ती है। तीसरा, आत्मतुलना के बजाय अपनी गरिमा और प्रगति को पहचानना। पुस्तक बार बार पाठक को बाहरी तुलना के दबाव से हटाकर अपनी अंतर्निहित गरिमा पर ध्यान देने के लिए कहती है। मोल के एक प्रसिद्ध उत्तर में दूसरों से तुलना को समय की बड़ी बर्बादी बताया गया है। इस विचार का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है। इसका आशय यह है कि किसी व्यक्ति का मूल्य दूसरों की उपलब्धि, स्वीकृति या व्यवहार से तय नहीं होना चाहिए। आज के सामाजिक परिवेश में जहां लोग लगातार दूसरों के चुने हुए और चमकदार क्षण देखते हैं, यह संदेश विशेष रूप से समझ में आता है। मैकेसी की दृष्टि में प्रगति केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, कठिन यात्रा के दौरान अब तक तय की गई दूरी को देखना भी जरूरी है। यह दृष्टिकोण असफलता या धीमी गति के अनुभव को अधिक संतुलित ढंग से समझने में सहायता देता है। हॉर्स का अपने असाधारण गुण को छिपाना एक दूसरी परत जोड़ता है। दूसरों की ईर्ष्या या अस्वीकृति के डर से व्यक्ति अपनी क्षमता को दबा सकता है। मित्रों का स्वीकार उसे अपनी विशेषता के साथ सहज होने में मदद करता है। इस तरह पुस्तक आत्मस्वीकृति को आत्ममुग्धता नहीं बनाती, वह कहती है कि अपनी सीमाओं, भावनाओं और प्रतिभाओं को ईमानदारी से स्वीकारना संभव है बिना किसी दूसरे को छोटा किए। इसका व्यावहारिक उपयोग यह है कि पाठक अपनी प्रगति के निजी मानदंड, सहायक संबंध और वास्तविक जरूरतों को तुलना से ऊपर रखे। चौथा, चित्र और हस्तलिखित भाषा क्यों संदेश का अभिन्न हिस्सा है। द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स को केवल सूक्तियों के संग्रह के रूप में समझना अधूरा होगा,
क्योंकि इसके चित्र अर्थ निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मैं किसी की स्याही, जल रंग और खुली रेखाओं वाली शैली पूर्णता से अधिक संवेदना पर जोर देती है।
विस्तृत आकाश, बर्फीले या खुले भूभाग और पात्रों के बीच की दूरी तथा निकटता संवादों के भावनात्मक संदर्भ को दृश्य रूप देते हैं।
कई पृष्ठों पर शब्द बहुत कम है, इसलिए पाठक को चित्र के साथ ठहरना पड़ता है। यह धीमापन पुस्तक के उद्देश्य के अनुकूल है।
संदेश तुरंत उपभोग करने के बजाय आत्मचिंतन के लिए जगह देते हैं। हस्तलिखित अक्षर ये आभास भी देते हैं कि कोई निकट व्यक्ति सीधे बात कर रहा है। हालांकि कुछ पाठकों को इसी शैली को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है।
चित्रों की अपूर्ण स्केच जैसी बनावट पुस्तक की विषय वस्तु से जुड़ती है। जब पाठ स्वयं को अधूरा, डरा हुआ या असुरक्षित मानने की अनुमति देता है, तब अत्यधिक चमकदार और नियंत्रित दृश्य शैली असंगत लगती।
इस रूप में कलात्मक माध्यम और विचार एक दूसरे को सहारा देते हैं। यही कारण है कि पुस्तक को किसी भी पृष्ठ से खोलकर पढ़ा जा सकता है। फिर भी पात्रों की साझा यात्रा देखने पर भावों का क्रम अधिक स्पष्ट होता है।
इसकी दृश्य संरचना इसे सामान्य स्वसहायता गद्य से अलग बनाती है।
अंत में ढीले कथानक की सीमा और चिंतनात्मक पठन की उपयोगिता इस पुस्तक की बड़ी विशेषता और संभावित सीमा दोनों इसकी ढीली संरचना है।
इसमें आरंभ, संघर्ष और समाधान वाला विस्तृत कथानक नहीं है।
यात्रा का एक हल्का ढांचा अवश्य है, लेकिन अधिकांश पृष्ठ स्वतंत्र संवाद या चिंतन के रूप में काम करते हैं।
इससे पाठक पुस्तक को थोड़े समय में पढ़ सकता है, किसी भी पृष्ठ से खोल सकता है या किसी वाक्य पर लौट सकता है।
उपहार के रूप में इसकी लोकप्रियता का एक कारण यही सुलभता है। संक्रमण, शोक, परीक्षा, नई शुरुआत या भावनात्मक थकान के समय छोटे स्पष्ट संदेश लंबे तर्कों से अधिक ग्रहणशील लग सकते हैं।
दूसरी ओर, जो पाठक पात्रों के गहरे विकास, जटिल संघर्ष या विचारों के व्यवस्थित विश्लेषण की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें यह संरचना अपर्याप्त लग सकती है।
कुछ संदेश इतने संक्षिप्त हैं कि उनका अर्थ पाठक के अनुभव पर निर्भर रहता है। पुस्तक स्वयं कठिन भावनाओं के सभी सामाजिक या चिकित्सकीय आयामों की व्याख्या नहीं करती, इसलिए इसे पेशेवर सहायता, विस्तृत दर्शन या गहन कथा साहित्य का विकल्प मानना उचित नहीं होगा।
इसकी उपयोगिता अलग है। यह बातचीत शुरू करने, किसी प्रिय व्यक्ति तक देखभाल पहुंचाने या अपने लिए एक शांत प्रतिबिंब का क्षण बनाने में सक्षम है।
पाठक के लिए सर्वोत्तम तरीका इसे त्वरित उत्तरों की पुस्तक नहीं, बल्कि छोटे संकेतों और चित्रों के माध्यम से अपनी स्थिति पर विचार करने की जगह मानना है।
निष्कर्ष में द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो भावनात्मक विषयों को सरल, दृश्य और गैर तकनीकी रूप में पढ़ना चाहते हैं।
बच्चे इसे मित्रता और दयालुता की कहानी की तरह ग्रहण कर सकते हैं, जबकि किशोर नए जीवन चरण में प्रवेश करने वाले लोग
और दबाव या अकेलेपन का अनुभव कर रहे वयस्क इसके संवादों में उपयोगी ठहराव पा सकते हैं।
इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसके लिए लंबे संदेश पढ़ना कठिन हो, लेकिन जिसे देखभाल और स्वीकार्यता का संकेत चाहिए।
व्यावहारिक लाभ इसके छोटे विचारों को बातचीत का आधार बनाने में है, जैसे सहायता मांगने, तुलना से बचने या किसी शांत मित्र की उपस्थिति का महत्व समझने में।
बौद्धिक रूप से यह पुस्तक बताती है कि लोकप्रिय आत्मविकास लेखन हमेशा विस्तृत सिद्धांतों पर निर्भर नहीं होता।
कभी शब्द, चित्र और खाली स्थान मिलकर भी अनुभव को विचार में बदल सकते हैं।
इसी बिंदु पर यह सामान्य स्वसहायता पुस्तकों से अलग दिखाई देती है।
बहुत सी पुस्तकें लक्ष्य, आदत या उत्पादकता के चरण देती हैं, जबकि मैं किसी का काम भावनात्मक पहचान और संबंध परक करुणा को प्राथमिकता देता है।
इसका चित्रित हस्तलिखित रूप संदेशों को यादगार बनाता है और हर पृष्ठ को अलग अनुभव देता है।
फिर भी पाठक को इसकी सीमा समझनी चाहिए। यह जटिल समस्याओं का विस्तृत समाधान नहीं, बल्कि संवेदनशील स्मरणों का संग्रह है।
जो व्यक्ति गहन कथा या कठोर विश्लेषण चाहता है, उसे इसे पूरक पठन के रूप में लेना चाहिए।
जो व्यक्ति संक्षिप्त, स्नेहपूर्ण और विचारोत्तेजक संगति चाहता है, उसके लिए यह एक विशिष्ट पुस्तक है।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं चार्ली मैकेसी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें।
फिर मिलते हैं।